नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। उन्होंने आज दोपहर गोलाघाट जिले में भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया। जैव इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने गहरे जल ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि ये जैव इथेनॉल संयंत्र उस लक्ष्य की ओर एक कदम है।
बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। इथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही आज यहाँ पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे, किसानों, नौजवानों, सभी के लिए नए अवसर बनाएंगे।
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। श्री मोदी ने रिफाइनरी में एक पॉली प्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दरांग जिले के मंगलदोई में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प की प्राप्ति में पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों के जरिए सीमावर्ती इलाकों की जनसांख्यिकी बदलने की साजिशें चल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा इसलिए अब देश में एक जनसांख्यिकी मिशन शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम असम में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जोरहाट हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के कोलकाता दौरे पर हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर में दूसरे दौर के सुधार दीपावली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि से पहले किए गए हैं, जिससे सभी को लाभ होगा। चेन्नई में व्यापार और उद्योग संघ के एक संयुक्त सम्मेलन में आज वित्त मंत्री ने कहा कि इस कर प्रणाली से एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को बल मिला है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय को जीएसटी पर विशेष पैकेज लाने के लिए प्रोत्साहित किया था और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार विभिन्न हितधारकों और मंत्री समूहों के साथ विचार विमर्श के बाद पेश किए गए थे। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। आज गुजरात के गांधीनगर में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में श्री शाह ने लोगों से मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का समर्थन करने का आह्वान किया। रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण चीन पर 50-100% तक टैरिफ लगाने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा पर चीन ने अमेरिका की आलोचना की है। शनिवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और प्रतिबंध उन्हें और जटिल बना देंगे। मीनाक्षी हुड्डा ने इंग्लैंड के लिवरपूल में खेली जा रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी उपविजेता रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से पंजाब में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए हैं। भारतीय महिला टीम ने 7 विकेट पर 281 रन का स्कोर खड़ा किया। प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना और हरलीन देओल ने अर्धशतक जड़े। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।